नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए 88 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने केरलम विधानसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश में अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर में श्रीराम यंत्र की स्थापना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम देश में रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित भारतीय निर्यातकों की सहायता के लिए रिजिलियंस और लॉजिस्टिक्स हस्तक्षेप योजना शुरू की। नववर्ष के त्यौहार चैत्र नवरात्रि, चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेटीचंड, नवरे और साजिब चोरोबा आज से देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जा रहे हैं। और फ्रांस में ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स के 16वें दौर में भारत के आयुष शेट्टी का मुकाबला जापान के युदाई ओकिमोतो से। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए 88 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व लोकसभा सांसद डॉ. राजदीप रॉय सिलचर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि मौजूदा राज्यसभा सांसद रामेश्वर तेली दुलियाजान सीट से खड़े होंगे। भाजपा के पूर्व राज्य अध्यक्ष रणजीत कुमार दास भवानीपुर सुभोग सीट से और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत डायमरी तामुलपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। असम में विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को एक ही चरण में होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 9 अप्रैल को होने वाले केरलम विधानसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुम्मनम राजशेखरन अरनमुंग सीट से चुनाव लड़ेंगे। अश्विनी एमएल को कासरगोड से, रेणु सुरेश को कोंगड़ से और बी राधाकृष्ण मेनन को चंगना शेडी से मैदान में उतारा गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केरलम में विधानसभा चुनाव के लिए 23 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं।
केरलम विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने के लिए केवल 2 दिन शेष हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि अधिकांश प्रमुख नेताओं को नामांकन दाखिल करना है। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। 3 प्रमुख मोर्चों सीपीआईएम के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ एलडीएफ, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने अधिकांश सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस आज दोपहर बाद दिल्ली से चुनाव के लिए दूसरी सूची जारी कर सकती है। आज के बाद केवल 2 कार्य दिन शेष रहने के साथ ही सभी 140 निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों के पास नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के लिए सीमित समय होगा। शनिवार और सोमवार को बड़ी संख्या में नामांकन दाखिल किए जाने की संभावना है। स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न राज्यों में विधानसभा उपचुनाव 2026 के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी के अनुसार रितेश रवि नाइक को गोवा की पोंडा विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। वहीं नागालैंड में दाओचीर आई एमचेन कोरिडांग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक में पार्टी ने वीरभद्रैया चरंतीमाठ को बागलकोट विधानसभा सीट से और श्रीनिवास टी दास करियप्पा को दावणगेरे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने में अब केवल 10 दिन रह गए हैं। सभी पार्टियां अपने उम्मीदवार के चयन, गठजोड़ को अंतिम रूप देने और सीटों के बंटवारे में व्यस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने बताया कि जल्द ही ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ सीटों के बंटवारे पर बात होगी। इस बीच ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री इडापड्डी पलनीसामी भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ बातचीत के लिए दिल्ली में हैं। डीएमके नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव मोर्चे के साथ भी सीटों के तालमेल पर बातचीत चल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है और अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर इसका प्रतीक है। वे अयोध्या में एक सभा को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि हम सभी एक समावेशी समाज और विकसित राष्ट्र के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
हम सभी एक समावेशी समाज और विकसित राष्ट्र के निर्माण के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से बस 2047 या शायद उससे पहले ही हम उन लक्ष्यों का प्राप्त कर सकेंगे। 21वीं सदी में हमारे समावेशी समाज और विकसित राष्ट्र की परिकल्पना राम राज्य के वर्णन में प्राप्त होती।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का भारत न केवल एक नया भारत है बल्कि एक बदलता हुआ भारत भी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्रीमती मुर्मू ने राम जन्मभूमि मंदिर में आरती की तथा श्रीराम यंत्र स्थापना समारोह में भाग लिया। वैदिक मंत्रों के बीच आज मंदिर की दूसरी मंजिल पर श्री राम यंत्र स्थापित किया गया।
राष्ट्रपति ने मंदिर निर्माण से जुड़े श्रमिकों को भी सम्मानित किया। आध्यात्मिक गुरु माता अमृतानंदमयी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न संतों के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज जिस श्री राम यंत्र की पूजा की गई, उसे 2 साल पहले अयोध्या लाया गया था और ये कांची कामकोटी पीठ द्वारा भेंट किया गया था। वैदिक गणित और ज्यामिति आकृतियों पर आधारित ये यंत्र एक पवित्र प्रतीक माना जाता है, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये दिव्य ऊर्जा और सकारात्मक आध्यात्मिक स्पंदनों को प्रवाहित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME देश के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय रक्षा उद्योग सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय उद्यमी, स्टार्टअप और नव प्रवर्तक भारत की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
कि हमारी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री एक नई सोच और नई टेक्नोलॉजीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं और देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। आज 100 से अधिक चैलेंजेस के साथ डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का 14th एडिशन भी जारी किया गया है। डिस्क की अब तक की सक्सेस को देखते हुए 100 से अधिक चैलेंजेस पहली बार हमारी DPSU द्वारा दिए जा रहे हैं। मैं सभी इनोवेटर्स को डिस्क के नए एडिशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
श्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कई MSME AI, स्वचालन, रोबोटिक्स और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सलेंस प्लेटफॉर्म के महत्व पर जोर दिया। ये प्लेटफॉर्म स्टार्टअप और MSME को सशस्त्र बलों के लिए नवीन समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
इस कॉन्क्लेव का जो मुख्य लक्ष्य है वह यही है कि हम इस दिशा में सोचें कि कैसे हमारे MSMEs को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन के साथ और अधिक जोड़ा जा सके, क्योंकि जब छोटे उद्योग बड़े डिफेंस प्रोग्राम्स का हिस्सा बनेंगे तो हम इनोवेशन की गति को और तेज कर पाएंगे।
सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित भारतीय निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए रिजिलियंस और लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन योजना शुरू की है। विदेश व्यापार महानिदेशक लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 14 फरवरी से 15 मार्च के बीच जारी किए गए बिलों के साथ समुद्री और हवाई मार्ग से भेजे जाने वाले शिपमेंट इस योजना के अंतर्गत आएंगे। इनमें प्रमुख मध्य पूर्व क्षेत्रों से आने जाने वाले कार्गो भी शामिल हैं।
यह इंटरवेंशन इसलिए भी जरूरी होता है कि ये कॉरिडोर इंडिया के लिए बहुत मैटर करता है, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत मैटर करता है। हमारी बायलैटरल ट्रेड इस पर्टिकुलर कॉरिडोर में 178 बिलियन तक है, जिसमें कि अगर हम एक्सपोर्ट देखें GCC एरिया में वह 56 बिलियन के करीब है और अगर हम UAE का एक्सपोर्ट देखें तो 36 बिलियन के करीब है। तो हमारा जो ग्लोबल ट्रेड का एक मेजर पोर्शन एज हाई एज 15% इस पर्टिकुलर टेरिटरी से लिंक्ड है। जैसे कि एक्सपोर्टर्स की डिमांड थी, हम कैसे एक्सपोर्ट फ्लोज को स्टेबलाइज करें और अपने मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट कर सके, उससे संबंधित ये स्कीम को हम लॉन्च कर रहे हैं।
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि सरकार संघर्ष को देखते हुए निर्यातकों की सहायता के लिए प्रमुख मंत्रालयों और विदेशी दूतावासों के साथ समन्वय कर रही है।
In terms of some of the cargos which
कुछ माल बाजार में लाए जाने के लिए भंडारण संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हम इस बारे में हितधारकों की बात सुनने और समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। हम बंदरगाह और जहाजरानी मंत्रालय, राजस्व विभाग, CBIC और मध्य पूर्व में स्थित अपने मिशनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे निर्यातकों को इन समस्याओं को हल करने में हर संभव सहायता मिल सके।
एक्सटेंड टू आवर एक्सपोर्टर्स टू रिजॉल्व दीज इश्यूज।
विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों का खंडन किया है जिनमें भारत और ईरान के बीच टकराव की बात कही गई है। तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है और नागरिकों से सोशल मीडिया पर इस तरह के निराधार दावों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया है। मंत्रालय ने उन दावों को भी फर्जी बताया है जिनमें कहा गया है कि ईरान ने 22 भारतीय जहाजों को होर्मुज जलडमरो मध्य से गुजरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। चैत्र नवरात्र, चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेटीचंड, नवरे, साजीबू, चेरोबा और नव संवत्सर आज देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं।
चैत्र नवरात्रि के ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना को समर्पित होते हैं। पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना के साथ भक्त माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। इसके बाद देवी ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। इन दिनों में व्रत, उपवास, पूजा पाठ और देवी भजनों के माध्यम से श्रद्धालु माँ दुर्गा से सुख समृद्धि और शक्ति की कामना करते हैं। कई घरों और मंदिरों में अखंड ज्योति जलाई जाती है। वहीं अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। चैत्र नवरात्रि के साथ ही शुरू होता है हिंदू नववर्ष। इसे विक्रम संवत के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन नई शुरुआत, नए संकल्प और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है।
मराठी नववर्ष के आरंभ का प्रतीक गुड़ी पड़वा आज पूरे महाराष्ट्र में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्राएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामुदायिक गतिविधियां आयोजित की गई हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। साथ ही कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में गरज और ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। ऑरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के 16वें दौर में आज भारत के आयुष शेट्टी का सामना जापान के युदाई ओकिमोतो से होगा। मुकाबला फ्रांस के पैलेस डे स्पोर्ट्स में खेला जाएगा। आयुष शेट्टी ने कल शाम अपने ही देश के खिलाड़ी किरण जॉर्ज को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं महिला सिंगल्स में अनमोल खरब का मुकाबला तन्वी शर्मा से होगा, जबकि मालविका बंसोड़ मलेशियाई खिलाड़ी वोंग लिंग चिंग के खिलाफ खेलेंगी। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म और आकाशवाणी की अगली कड़ी में हम वनस्पति विज्ञानी श्री गंभीर सिंह योनजोन से बात करेंगे। श्री सिंह को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए 88 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा जालुकबारे निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने केरलम विधानसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम देश में रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित भारतीय निर्यातकों की सहायता के लिए रिजिलियंस और लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन योजना शुरू की। नववर्ष के त्यौहार चैत्र नवरात्रि, चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेटीचंड, नवरे और साजिबु चेरोबा आज देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।